ये करेंगे, ये इंट्रोड्यूस करेंगे, जबकि दूसरे लोग जो है वो नहीं है। क्योंकि कमेंट्स जो थे आज मैं देख रही थी, जो मीम्स आई हुई थी, वो कह रही थी कि इस चीज को तो गवर्नमेंट के लेवल पे अभी तक जो है वो माना ही नहीं हुआ है।
नहीं
तो
हुआ
अगर
है।
माना नहीं हुआ है तो आप इसको कैसे फिर करेंगे वो
यू कैन नॉट इनकरेज कैनेडियंस टू गो एंड इन्वेस्ट देयर मनी इन क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज आप आजकल में देख लें
कितनी नीचे जा रही है,
फ्लक्चुएट कर रही है, बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। कहां 66,000 तक पहुंच गया था और आज 29,000।
राइट,
सो यू नो व्हाट, जनाब पैट्रिक ब्राउन साहब ने भी और दूसरे कैंडिडेट जो थे उन तमाम का मुतफ़ा राय ये था कि भाई आप कैनेडियंस को इनकरेज ना करें कि वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें
एग्जैक्टली, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वही बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर बैकिंग नहीं है तो फिर उसको जो है उसमें खतरा है उसमें इन्वेस्ट करना।
एग्जैक्टली,
तो लोगों का जो है वो
वैसे भी स्टॉक मार्केट इज सो
वोलेटाइल
दीस डेज, और पर्टिकुलरली ये जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है तो वो जो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, तो अब उसमें तो इन्वेस्ट करना अभी
समझदारी नहीं है, समझदारी नहीं है। यस बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आज बड़ी अच्छी बात है, ये वैसे कोई इतनी अनहोनी भी नहीं है, 2019 में भी एक दफा हुआ था, लेकिन अब फिर से, क्योंकि आपको पता ही है कि ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, सऊदी अरेमको बहुत जो नीचे चली गई थी, बहुत उन्होंने वो किए थे, उनको बंदे भी निकालने पड़े थे पीछे जब दिन बहुत बुरे जा रहे थे, लेकिन अब सऊदी अरेमको हैज टेकन ओवर एप्पल, एप्पल एज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑन प्लैनेट अर्थ।
वाओ, ओके,
ठीक है जी। तो सऊदी जो अरेमको है उसके जो आज नेट वर्थ है, इट इज टचिंग एज ऑफ टुडे जब हम बात कर रहे हैं 2.43 trillion US dollars कंपेयर टू एप्पल्स 2.37 trillion। और ये एक दफा बस हुआ था इससे पहले 2019 में, जब जो है सऊदी अरेमको ने एप्पल को सरपास किया था, तो लेकिन उस वक्त जो थी वो एप्पल जो थी इससे आगे निकल गई थी और 3 trillion को उसने टच कर लिया था, तो अब अरेमको जो है वो अब फिर से इनसे आगे निकल गई है। तो जाहिर है अगर पेट्रोल की कीमतें ऐसे ही ऊपर 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 जाएंगी तो फिर ये कंपनीज जो है जाहिर है कि दे आर गोइंग टू बी द
बेनिफिशरीज।
यस ऐसे है। आज अफसोस का एक वाकया ये है कि, लेकिन उसमें अफसोस कम है इसलिए कि चाइनीज एक एयरलाइनर थी एयरबस, उसको आग लग गई जब वो उड़ने की कोशिश अभी कर रही थी, लेकिन हुआ ये है कि अगर वो अभी उसने उड़ा ही नहीं था, ये थी एयरबस A319-115 जेट, ये जा रही थी उसके ऊपर दूसरे सिटी एक में चोंगगोइंग से, तो इसके अंदर मजद भाई 113 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन जैसे ही इसने टेक ऑफ करने का सोचा तो इसके अंदर कुछ खराबी महसूस हुई, तो उन्होंने उधर ही रनवे पे ही रोक दिया इसको, उड़े नहीं लेके इसको, तो उसको आग लग गई जैसे उन्होंने रोका ना उसको, तो उसमें कुछ लोगों को जो है माइनर इंजरीज आई हैं एंड दे आर बीइंग ट्रीटेड। तो वही वो कह रहे हैं कि ये टिबेट एयरलाइंस का था ये एयरबस, तो अगर ये उड़ जाती तो ये फट जाता फिर तैयारा सारा, तो फिर बहुत सारा नुकसान हो जाता।
36 लोगों को इंजरीज हुई हैं,
माइनर
इंजरीज है 36 लोगों को, क्योंकि वो प्लेन जो है वो अभी टेक ऑफ नहीं किया और उसको स्किड कर गया वापस जब आया था।
यस दैट्स राइट, तो ये काफी जी बचाव हो गया है। अच्छा जी, फिनलैंड जो है अब वो बाहर आ गया जरा काफी, और आज उसने निकल के कहा है कि नहीं जी हम जो है वो नेटो की मेंबरशिप लेंगे।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
जी,
ये आपको पता ही है माजिद भाई, कुछ कंट्रीज थे, ये स्वीडन था, फिनलैंड था, ये लोग कहते थे नहीं हमको नेटो को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है,
न्यूट्रल,
हाँ न्यूट्रल, और हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, हमको इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है डिफेंस पे, हम जो है अपने सोशल सेक्टर पे ज्यादा करते हैं, इसीलिए ये जो कंट्रीज थे सारे जो स्कैंडिनेविया की तरफ हैं, इनको ये कहा जाता है कि दे आर द बेस्ट कंट्रीज, क्योंकि ये सोशल सर्विसेज पे बहुत पैसा लगाते हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि नहीं जी हम कर रहे हैं, और अब लग रहा है कि स्वीडन भी कुछ दिनों में ये जो है
अभी तक मना किया हुआ है उसने,
हाँ, लेकिन वो लगता है कि ये भी इस तरफ जाएंगे, नेटो की जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं अलायंस को। लेकिन आज रशिया ने जो है, क्योंकि इन्होंने ये इसलिए स्टेप लिया है क्योंकि रशिया ने आज कहा है कि जी हमने, यानी यूक्रेन ने कहा है कि रशिया ने सेंट्रल और ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ अपना ऑफेंसिव जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और इससे चीजें जो है दिन ब दिन खराब होती जा रही है। नेटो का हिस्सा बनने का सिर्फ यही नहीं होता कि आप डिफेंस अलायंस का हिस्सा होते हैं, फिर बेनिफिट्स भी होते हैं उसके। अच्छा, बेनिफिट्स के लिए भी ये जा रहे हैं, क्योंकि अगेन जो है पुतिन साहब ने आज कहा है कि ये जो वेस्ट ने ये जो हमारे पे ये जो ऐसे इतनी ज्यादा ये जो सैंक्शंस और ये चीजें लगा दी हैं, उससे यूरोप का ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। ये पहले भी कुछ दिन पहले भी गई थी, उन्होंने कहा ये जो इतनी बेतहाशा वहां पे इन्फ्लेशन हो गई है और ये इतना ज्यादा जो इकोनॉमिक क्राइसिस ईयू में आ रहा है, और उन्होंने आज बड़ा वॉर्न किया है पुतिन साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो लोग जो कुछ भी ये कर रहे हैं वेस्ट में, उसकी वजह से तो दुनिया के जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उसके अंदर फैमिन आएगा, उन्होंने कहा है, उनकी प्रिडिक्शन है। तो वो कहते हैं कि जो अपने हम पे सेक्शन लगाई हैं, हमको तो जो हर्ट करेंगी करेंगी, ईयू को बहुत ज्यादा हर्ट करेंगी, तो ये आपका गलत है। लेकिन इन बयानात के ऊपर फिर अब ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमको नेटो ज्वाइन कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना होए कि ये हमारी तरफ आ जाए, क्योंकि पोलैंड है ना बीच में, पोलैंड को अगर इन्होंने ले लिया और फिर आगे चले गए तो फिर ये चलते ही जाएंगे। तो इसलिए आज
फिनलैंड का जो है वो 1400 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो रशिया से मिलता है,
इसीलिए
तो रशिया को पसंद नहीं है कि आप हमारा 1400 किलोमीटर
नेटो की अलायंस ले रहे हैं।
हाँ,
उन्होंने पहले ही मना किया था कि इस एरिया के अंदर मत आने दें नेटो को, तो अब देखेंगे क्या होता है। अच्छा जनाब, ईरान के अंदर आज बहुत ही बड़ी जो है वो कल की ये न्यूज थी, कल हुई है, और आज मैसिव तरीके से आज उनके जो बैंक्स हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि जो हमारे प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कल की अनाउंसमेंट की थी उससे लोगों को फायदा ऑलरेडी होना शुरू हो गया। हुआ क्या है कि आपको पता है कि ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए हुए हैं अमेरिका में, लेकिन इनके लिए ये अच्छी बात है कि दे आर एन ऑयल पावर, तो उसकी वजह से अब जब ऑयल की कीमतें या तो ऊपर गई हैं या इनकी अच्छी मैनेजमेंट है, इन्होंने कहा है जी कि हालांकि ये कहता है ईरान बार बार कि जो 2015 की जो न्यूक्लियर डील है हम करने को तैयार हैं, हमसे आप सैंक्शंस हटा लो, तो अभी तक वो सैंक्शंस नहीं हटा रहे और वो ध्यान उनका यूक्रेन पे चला गया सारा। तो रईसी साहब ने कल कहा था कि हम जो लोग बहुत ज्यादा जो ब्रेड नहीं खरीद सक रहे, मेडिसिन नहीं ले सक रहे, पेट्रोल नहीं ले सक रहे, हम उन सबको सब्सिडीज देंगे, सबको हम सब्सिडीज देंगे। आज ईरान का आज सुबह सेंट्रल बैंक ने कहा है कि 85 मिलियन की जो ये हमारी पॉपुलेशन है इसमें से मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं, सिर्फ जो रिचेस्ट पॉपुलेशन है उसको छोड़ के मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं ईरान के अंदर, उनको ये कैश सब्सिडीज मिलना शुरू हो गई हैं। एंड ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज स्पेंट 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स इन दिस सब्सिडीज। और उन्होंने रईसी साहब ने कहा है कि जी हम इनको प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए आने वाले दिनों में जो गरीब लोग हैं और मिडिल क्लास हैं उनको ई कूपॉन्स देंगे ताकि वो इजीली अपने जो हैं अपनी खरीदारी कर सकें कम प्राइसेस के ऊपर। सिर्फ ये स्कीम रिच लोगों के लिए नहीं है उस कंट्री में, एंड दोज आर नॉट जस्ट एनी रिच, द सुपर रिच जो है वहां पे उनके लिए है मोस्ट ऑफ द पीपल। तो ये जब आज वैसे तो लग रहा था, क्योंकि ईरान के ऊपर आपको पता है ये शक ही लगा रहता है यूरोपियंस का कि नहीं ये होएगा नहीं ऐसे, लेकिन जब सेंट्रल बैंक ने आज कहा है कि नहीं लोगों के अकाउंट्स में ये पैसे जाने शुरू हो गए हैं, तो फिर उनको जी जरा चैन आ गया है। श्रीलंका की आपको हम हालत बहुत दिनों से बता रही हैं कि वो जो राजापक्षे ब्रदर्स हैं उनके लोग बड़े खिलाफ हुए हैं, उनके फैमिली के 5 बंदे जो थे वो उसके अंदर थे, भाई प्रेसिडेंट, दूसरा भाई प्राइम मिनिस्टर और बाकी 3 और फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी, मिनिस्टर्स भी थे, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ऑल दैट, तो पेट्रोलियम एंड जो मतलब अच्छी बड़ी बड़ी जो थी ना मिनिस्ट्री वो लेके बैठे हुए थे। बहरहाल जी उन सबको 3 जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिजाइन किया और प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने कहा जी घर जाओ, उन्होंने फिर उनको रिजाइन करना पड़ा। तो आज बड़ी मुश्किल में श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे जो हैं फिर से इनको बुलाया गया है कि भाई तुम प्राइम मिनिस्टर बनो और इस मुल्क के जो है हालात खराब जो है उनको ठीक करो। ये जो रानिल विक्रमसिंघे हैं ये ऑलरेडी माजद भाई 5 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं श्रीलंका के, और एज भी इनकी 73 है, और इस वक्त किसी जमाने में तो इनकी जो यूनाइटेड नेशनल पार्टी होती थी वो जीतती होती थी तभी ये प्राइम मिनिस्टर बनते थे, इस वक्त इनकी टोटल 1 सीट है पार्लियामेंट में, 1 सीट है खाली, 1 एमपीएन का,
इतना ऑनेस्ट होगा, ये
ऑनेस्ट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि और कोई भी इस वक्त जो है मुल्क के रेंज लेने को संभालने को तैयार नहीं है, इतनी क्राइसिस की और बुरी हालत है, इसने फिर आगे आके फिर इसने हिम्मत दिखाई, उसने कहा कि नहीं वी विल वर्क टुगेदर, विल डू समथिंग, और हम
मगर एक और चीज है ना कि वहां की जो आवाम है वो कह रहे हैं कि जो भी नई हुकूमत आएगी तो वो सबसे पहले ये जो 5 भाई हैं और इनके खानदान वाले हैं
इनको ट्राई करें आप,
इनको आप ट्राई करें इनको
करप्शन के लिए,
तो वो जो डिमांड है दैट इज वेरी डेंजरस कि इनको अब अगर फिर दोबारा से ट्रायल पे गए तो फिर वहां हंगामे होंगे, उनके फेवर वाले और इनके फेवर वाले और ये वो, तो अगर इनको चाहिए जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं,
नहीं उन्होंने क्लियर कर दिया, विक्रमसिंघे साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा जी मेरा फोकस इकोनॉमिक वोज को खत्म करने के लिए और आईएमएफ से बेल आउट डील करने के लिए होएगा। मैं ये मुकदमों शिकदमों में नहीं पड़ रहा, ऑलरेडी 73 ईयर्स ओल्ड, उनको इतने लोचे नहीं चाहिए ना। वो कह रहे हैं कि नहीं, मुल्क की जो हालत खराब है उसको मैं ठीक करने आ रहा हूँ। तो अगर जुडिशरी अगर वो करना चाहती है,
अगर ये कर दे तो ये बाबाए कौम हो जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल एनीवेज। अच्छा जी, वही जो पुतिन साहब कह रहे हैं कि यूरोप का बुरा हाल होएगा, तो वो बुरे हाल जो है कुछ कुछ नजर आने शुरू हो गए हैं। यूएस के अंदर जनाब मॉर्गेज रेट्स जो हैं वो बेतहाशा ऊपर चले गए हैं। सेंट्रल बैंक ने थोड़े दिन पहले ये अनाउंसमेंट की थी, उसकी वजह है कि बेतहाशा इन्फ्लेशन बढ़ गई है मुल्क के अंदर। तो उसके लिए इनको जो करने पड़े हैं, जिसका के मतलब है कि अब बेशुमार लोग अमेरिका में जो सोच रहे थे कि हम घर लेंगे, वो घर नहीं ले सकेंगे। वो कहते हैं जी एवरेज फॉर 30 ईयर लोन जो है 5.3% से 5.3 को टच कर रहा है 5.27% से जस्ट लास्ट वीक। तो 2.7 से 5.3% अब ये हो गया, और वो कह रहे हैं कि ये हाईएस्ट है सिंस 2019। बहुत ज्यादा ऊपर चला गया इनका रेट। और इसके अलावा वो कह रहे हैं प्रोड्यूसर जो प्राइसेस हैं वो भी 11% ऊपर चली गई हैं।
तो जो उस जमाने में जो हुआ था ना, जब ये इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया था ऑल ऑफ अ सडन, तो उस जमाने में ये हुआ था कि लोग couldn't afford their own houses, जिसमें रह रहे थे,
that's what they're saying.
तो वो जो है वो फॉर सेल पे आ गए थे सारे, और घरों की कीमतें बहुत नीचे गिर गई थी। अमेजिंगली $87,000 में हमारा जो वहां पर डिट्रॉयट में जो स्टेशन था वहां पर, तो उसमें जो वहां पर जो एक बंदा काम करता था हमारे लिए, उसने घर खरीदा था और हमें दिखाई उसकी तस्वीर, 87,000 में उसने एक बंगलो खरीदा था, ब्यूटीफुल बंगलो।
माजिद भाई, ये हालत इनकी हो गई थी, आप सोच सकते हैं, $3-3 लाख का वो जो फ्लोरिडा बीच है उसके पास घर थे, 5 बेडरूम 5 बाथरूम्स विद स्विमिंग पूल एंड एवरीथिंग। कैन यू इमेजिन, 3 लाख का घर टोटल। तो ऐसी ऐसी कीमतें आ गई थी नीचे, जो कि आपको पता ही है कि कई कई मिलियन के हैं, क्योंकि दे आर जस्ट नियर यू नो फ्लोरिडा बीच। बीच के पास तो बहुत ही एक्सपेंसिव होती प्रॉपर्टी। तो 3-3 लाख पे आ गई थी। तो बहरहाल जी, ये अब फिर से हालत जो है वहां पे खराब हो रही है। अच्छा जनाब, अमेरिका के अंदर जी आज काफी हलचल नजर आ रही है, इसलिए कि जो आसियान के जो मेंबर्स हैं, ये जो हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनके जो हैं सारे ऑफिशियल्स वहां पे पहुंचे हुए हैं एक्सेप्ट फॉर टू। ये इसके अंदर आसियान के जो मेंबर्स हैं, ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम जो है ये आसियान कंट्रीज बनाते हैं। तो इनके लीडर्स कुछ बात कर रहे हैं। अलबत्त म्यांमार जो है, क्योंकि उनका जो जनरल था जनरल मिन ऑंग, उन्होंने क्योंकि सू की गवर्नमेंट जो थी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड उसको हटाया था, तो इसलिए बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको नहीं बुलाया है। और फिलीपींस के जो अभी रिसेंटली जो विन किए हैं मार्कोस जूनियर, वो नहीं आ सके हैं। तो उसके अलावा जो हैं बाकी लोग हैं, और कुछ और भी लोग जो हैं उन्होंने आज इनके साथ बातचीत में जो है वो ज्वाइन किया है। अच्छा, इसका मकसद क्या है इसका, और इस मौके पे जो है क्यों बुलाया है इन्होंने बाइडन साहब ने इन सारों को, इस मौके पे बाइडन साहब ने इन सारों को इसलिए बुलाया है क्योंकि इनको लग रहा है कि चाइना अपना जो है वो बढ़ाता जा रहा है इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी की तरफ। और इसके अलावा जो है वो कह रहे हैं कि ये चाइना जो है इसके भी एक्सपेंशनिस्ट वो हैं, जो है डिजाइंस हैं। तो आप लोग इस पे क्या कहते हो? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली जिस वक्त ये इन्होंने यूएनजीए में कहा था अमेरिका ने और उसके एलाइज ने कि रशिया के अगेंस्ट जो है आप वोट करें, तो वियतनाम और लाओस ने उसके अगेंस्ट वोटिंग की थी। उन्होंने रशिया के जो है के हक में की थी, इनके अगेंस्ट की थी। और जो है इसके अलावा सिंगापुर जो था उसने सिर्फ इनके हक में की थी, और बाकी के जो कंट्रीज थे उन्होंने सैंक्शंस में भी ज्वाइन नहीं किया था। सिंगापुर ने यानी कि सैंक्शंस में ज्वाइन किया, बाकी उन्होंने रशिया के अगेंस्ट जो सैंक्शंस है उसमें भी नहीं किया। तो बाइडन साहब, आप इनके साथ बात करना चाहते हैं, काफी लंबा इनका टॉल जो है वो टारगेट है, इनके साथ मुलाकातें हैं, बड़ा कहते हैं इंटीमेट जो है वो एक लंच होगा। इंटीमेट का क्या मतलब है? गले लगाएंगे एक दूसरे को। अच्छा जी, वो होएगा। उसके अलावा जी यहां पे कुछ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो है वो भी इनको दावतें देंगे। कमला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन, इनके साथ भी वर्किंग लंच होएगा जी इनका सारों का, ठीक है जी, तो ये सारा होएगा। अच्छा जनाब, अल जजीरा की कल हमने आपको बताया था कि जो वो अनफॉर्चुनेटली वो जो शिरीन जो है वो उनकी रिपोर्टर की डेथ हो गई है वहां पे, अकॉर्डिंग टू अल जजीरा के वो जो है अलेजली इसराइल की जो इसराइली फोर्सेज हैं उन्होंने गोली मारी है और उसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। तो आज लोगों ने पूछा है कि ये शिरीन अबू अकलक जो है ये बेसिकली ये शीज एन अमेरिकन नेशनल, तो उसके बारे में नेड प्राइस साहब जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है उनसे पूछा कि भाई तुम लोग कब तक अपना, ये तुम्हारा ठीक है एल आया इसराइल तो तुम लोग कब तक इसके साथ खड़े रहोगे, क्यों तुम इसको नहीं पूछ रहे हो। इससे पहले भी एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, अमेरिकन अरब जर्नलिस्ट जो है वो इसके अंदर पैलेस्टाइन के अंदर जो था वो था और उसको इसराइली जो थे पकड़ के ले गए थे, उसकी आंखें बांधी, उसको ड्रैग किया, उसको ठुड्डे मारे, उसको फिर डिटेन कर दिया और डिटेंशन में वो मर गया। तो तुम लोग कब अपने अमेरिकन सिटीजन के ऊपर बोलना शुरू करोगे और ये जो तुम्हारा एल आया है इससे तुम लोग कब बात करोगे। तो वो जो आदमी जिसको मारा था इन्होंने पहले डिटेंशन में, उमर असद, 78 ईयर्स उस बेचारे आदमी की एज थी। तो जिसको ये तो उन्होंने कहा जी कि तुम लोग तो कहते हो हम अपने सिटीजन को बड़ा जो है वो करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, तो अब ये बैक टू बैक दो अमेरिकन सिटीजन मर गए हैं तो तुम लोग कैसे करोगे। तो इन्होंने कहा जी कि हम उनकी जजमेंट के ऊपर जरा बिलीव करते हैं इसराइल के ऊपर कि वो इन्वेस्टिगेशन बिठाएंगे, उन्होंने पहले भी कहा था और अब भी उन्होंने कहा है। तो ये यहां पे जो राइट्स ग्रुप्स वाले हैं वो कह रहे हैं बस जी फिर इस इन्वेस्टिगेशन का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि इजरायली ही मरने वाले हैं, उनको ही आप कह रहे हो इन्वेस्टिगेशन बिठाने के लिए, तो वो क्या इन्वेस्टिगेशन बिठाएंगे। तो सिंस देन वो जो है उमर असद जो 78 इयर्स का मार दिया उसके वक्त भी आपने यही कहा था, कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने कहा हां जी इन्वेस्टिगेशन बिठाएंगे, फिर क्या हुआ, पूछा आपने, नहीं पूछा। तो अब ये जो इसकी शिरीन अबू अकलक है इसके बारे में भी यही होगा कि आप बोलेंगे कि जी हमने इन्वेस्टिगेशन उनको कहा था, उन्होंने बिठाई थी, होएगा कुछ भी नहीं उसके अंदर। तो आप जरा थोड़ा सा जोर दें और इतना भी आप जो है ना वो ये आपके एम्प्टी जेस्चर हैं जब आप कहते हैं कि ओ जी हम बिठा लेंगे और वो कर लेंगे, तो आप जरा थोड़ा जोर दें अपने एलआई के ऊपर कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं हमें लग नहीं रहा कि ये करेंगे। द वायर की आज एक स्टोरी है, दिस इज रिटन बाय विवेक गुप्ता, और इस स्टोरी के अंदर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक ये स्टोरी बताई है। उन्होंने कहा जी कि एक नई हिस्ट्री की बुक जो है ग्रेड 9 में हरियाणा में अब पढ़ाई जाएगी और इसके अंदर एक चैप्टर है जिसमें कि उन्होंने जो इंडिया की पार्टीशन 1947 में हुई थी उसके ऊपर बात की है। अच्छा जी बात क्या की है, उन्होंने कहा है उन्होंने स्क्वेयरली ये कांग्रेस को इसके अंदर ब्लेम दिया है कि कांग्रेस की वजह से इंडिया का पार्टीशन होया। तो वो कहते हैं जी कि ये जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो था उसने, यानी कि जो आरएसएस बीजेपी का हिस्सा है उसने तो बचाने की कोशिश की थी लेकिन आपने कांग्रेस ने इसको बचाने की कोशिश नहीं की। ये किताब जो है मई 20th को हर जगह पे अवेलेबल होएगी, इसका सेकंड लास्ट चैप्टर जो है पार्टीशन के साथ जो है वो डील करता है। अच्छा इसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं इस किताब के अंदर, ये जो हिस्ट्री की बुक है। अच्छा उन्होंने कहा जी कि पार्टीशन जो था वो होना नहीं था लेकिन कांग्रेस जो थी वो जान छुड़ाना चाहती थी गोरे से, तो मुस्लिम लीग भी यही चाहती थी कि गोरे से जान छुड़ाई जाए, तो कांग्रेस ने एक तरह से अनहोली अलायंस बना ली इसके साथ मुस्लिम लीग के साथ, लेकिन उनको लग नहीं रहा था कि यह चीज आगे जा रही है। जिन्ना साहब जो है वो तो छोड़ छाड़ के सारा कुछ चले गए थे लेकिन इन्होंने कांग्रेस वालों ने बार 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 उसको ल्योर किया कि तुम आओ तुम हमारे साथ बात करो ये। और इस किताब में लिखा हुआ जी कि वो जिन्ना साहब जो है वो कोई एडे वड्डे कोई लीडर नहीं थे, ऐसे ही उसको इन्होंने बड़ा बना दिया है, कांग्रेस ने बड़ा बना दिया है। जिन्ना कोई बड़ा लीडर नहीं था, कांग्रेस ने बड़ा उसको बनाया है, बार 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 बुला के उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा दी है बहुत ज्यादा और उसको कहा कि भाई तुम हमारे साथ ज्वाइन करो। तो जिन्ना भी बड़ा स्टबन था, नेहरू भी बड़ा था, पहले तो गांधी जी जो थे महात्मा गांधी जी वो कहते थे कि हमको मुल्क का जो है वो बंटवारा नहीं करना है, लेकिन जिस वक्त इन्होंने बहुत ही जोर दिया कांग्रेस ने तो उन्होंने कहा ठीक है जी फिर हम बंटवारा करेंगे इसका। तो उसकी वजह से वो कहते हैं जी लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ था उसमें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के मुद्दे फिर ये दोनों पार्टियां जो है सामने लेकर आ गई कि इनके साथ अच्छे सलूक नहीं किए जा रहे हैं, फिर जो खिलाफत मूवमेंट चली तो उसमें इन्होंने ज्वाइन इनको किया बाद में, पहले तो नहीं फिर बाद में कर लिया कि हाँ जी हाँ हिंदुस्तान से निकालो इनको ब्रिटिशर्स को, और हौले हौले वो कहते हैं जी चीजें इतनी खराब हो गई कि मुल्क का ही बंटवारा हो गया अंग्रेज को भगाने के चक्कर में। तो अब जाहिर है कि मुसलमानों का थोड़ा इस पर रिएक्शन आया कि आपने कैसे कहा है कि जिना साहब बड़े लीडर नहीं थे उसको कांग्रेस ने बड़ा बनाया। तो बहरहाल जी एनीवेज ये किताब आई है जो कि अब पढ़ाई जाएगी ग्रेड 9 में हरियाणा में, इसको अप्रूव किया है इनके बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, यहां पे एक नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस जो है इंडिया का, उसकी आज आई है कि इंडिया के अंदर भी बेतहाशा जो है इन्फ्लेशन बढ़ गई है एंड दिस इज 8 ईयर हाई एंड इट इज टचिंग 7.8%. अप्रैल के अंदर ये 6.95 थी, नहीं मार्च में 6.95 थी और अब ये 7.8 को टच कर रही है. इसके अलावा कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो भी जंप करके 8.5% पे चला गया है और यहां पे जो हाईएस्ट इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 10.8% है इन्फ्लेशन. तो वो कह रहे हैं जी ये चीजें कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रही हैं, फूड प्राइसेस जो हैं 8.5% रूरल इंडिया में चली गई हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेंसिव हो गई हैं. तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है. एक औरत है जी 23 साल की, उसने आज यहां पे राजस्थान के अंदर, राजस्थान के एक मिनिस्टर हैं महेश जोशी, इनके बेटे रोहित जोशी के ऊपर रेप का चार्ज लगाया है. उन्होंने कहा जी मेरी दोस्ती इनके साथ जो है हुई थी फेसबुक के ऊपर और उसके बाद फिर ये मुझे इसने बुलाना शुरू किया, जब मैं गई तो इसने मुझे ड्रग करके ड्रिंक में देके और फिर मुझे रेप किया और उसके बाद मेरी तस्वीरें मुझे हर वक्त कहता था, ब्लैकमेल करता था कि ये मैं वायरल कर दूंगा और उसमें हर वक्त ये मुझे बुला के रेप करता था, ब्लैकमेल करता था. तो बहरहाल जी अब ये जो केस है ये लिखा है उसने पुलिस के अंदर लिखा गया है, सदर बाजार पुलिस स्टेशन में लिखा गया है और अब जो है वो कह रहे हैं जी मिनिस्टर के बेटे के खिलाफ जो है अब आप उसको बुलाएं और उसके ऊपर करें. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो है नया तिंगारा में हिंदुस्तान में, वहां पे एक आदमी को इस कोर्ट ने 106 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट दी है. 106 ईयर्स. उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि एक छोटी माइनर बच्ची का, उसी का बाप जो है उसको रेप करता रहा है और उस बच्ची को डराता रहा है कि तुमने किसी को बताना नहीं है, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा जो है मैं बहुत बुरा हाल करूंगा. ये ग्रेड 7 की बच्ची थी. तो उस वक्त चीजें सामने आई जब इसको पेट में दर्द हुआ और जाके उन्होंने दिखाया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा जी शी इज प्रेग्नेंट. उस वक्त इस बच्ची ने फिर जो है अपनी मां की बहन यानी अपनी मासी जो है उसको सारा कुछ बताया, तो फिर मासी जो है उसने जाके पुलिस को बताया. तो ये केस जो है 2017 में रजिस्टर हुआ था और आज जो है इसका फाइनल वो दिया है और उन्होंने कहा जी इस आदमी को 106 ईयर्स रखें जेल के अंदर. अपना खुद का बाप जो है वो अपनी बच्ची के साथ ये करता रहा है, कैसे, हाउ कैन यू डू दिस. अच्छा जनाब, अभी जो खबर नहीं, हाशमी साहब आपको थोड़ी सी खबर बता रहे थे कि एफआईए ने कहा है जी कि हम सारे केसेस जो हैं शहबाज शरीफ और उनके बेटे पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं हमजा शरीफ के अगेंस्ट खत्म कर रहे हैं. मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे जनाब, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे. तो एफआईए, अच्छा आज अदालत ने जब पूछा इनको, अदालत ने आज इनको कहा कि भई मैंने आपको बड़ी दफा कहा है कि आपके क्लाइंट जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब वो नहीं आ रहे हैं अदालत के सामने. तो उन्होंने कहा जी, काउंसिल ने कहा कि हमने आपसे कहा था कि उनको जरा थोड़ी सी एग्जम्पशन दे दें ताकि वो पर्सनली वो अपीयर नहीं हो सकते क्योंकि वो बड़े मसरूफ हैं और उनके बेटे भी, तो आप करें. लेकिन तो कोर्ट ने कहा कि अब फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट. तो एफआईए ने कहा जी हम अपने तमाम जो इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के हमने केसेस डाले हुए थे वो हम सब वापस ले रहे हैं, अब हम परस्यू नहीं करना चाहते. तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप परस्यू नहीं करना चाहते? नहीं जी हम नहीं करना चाहते. उन्होंने कहा अपना अपना जो जो है वो जजमेंट आप मैं बाद में दूंगा, आप जरा रिकॉर्ड कर दें अपने ये सारे जो आपने बातें कही हैं. लीडर कैसा होता है या कैसा होना चाहिए? कल हमने जिना साहब की बहुत बात की यहां पर एक लीडर की क्रेडिबिलिटी के बारे में.
सही,
दुनिया जो आजकल की है शायद उनको याद नहीं है या वो याद नहीं रखना चाहते जिना साहब को. तो एक ऐसा लीडर जिसको के दुनिया ने बहुत प्यार दिखाया उसका हम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, बराक ओबामा साहब. आप जरा वो क्लिप देखें और जरा सुने कि वो क्या कह रहे हैं कि लीडर कैसा होना चाहिए. दिखाएं जी जरा आमिर ये बराक ओबामा साहब की वो जो है वो क्लिप बताएं जिसमें कि वो एक लीडर की बता रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं.
यू जस्ट हैव टू फ्लड ए कंट्रीज पब्लिक स्क्वायर विद एनफ रॉ सीवेज. You just have to raise enough questions, spread enough dirt, plant enough conspiracy theorizing that citizens no longer know what to believe. Once they lose trust in their leaders, in mainstream media, in political institutions, in each other, in the possibility of truth, The game's won.
तो ये देखें जरा आपके द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रूथ जो है उसके ऊपर से अगर आपका एतबार उठ जाएगा तो आप कैसे अपने लीडरों के ऊपर जो है वो एतबार करेंगे और इन अदारों के ऊपर कैसे आप करेंगे. जिन्होंने आज कहा जी हम सारे केसेस जो हैं वो खत्म करें। अच्छा जी, आज मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने कहा है जी कि बड़ा एक फिर एक मतलब बड़ा अच्छा आज की जो हेडलाइन है ना, मैंने आपको बताई नहीं, आज की जो न्यूज की हेडलाइन है ना उसके बाद मुझे कहना चाहिए था कि मुझे हार्ट अटैक आ सकता है न्यूज सुनाने के बाद ना, मुझे बिल्कुल हार्ट अटैक आएगा आने वाला है मुझे, ऐसी आज की खबरें हैं हमारी। आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि आर्मी को चाहिए कि एक ऐसा आदमी अपने इंस्टीट्यूशन में लगाया जाए जिसको के जो है दुनिया तब सलाम करेगी अगर उसका रिकॉर्ड अनब्लेमिश्ड होएगा। लुक हु इज टॉकिंग है जी, ऐसा बंदा जो है हेड होना चाहिए पाकिस्तान मिलिट्री का। ये बात कर रही थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर जर्नलिस्टों से, तो इन्होंने कहा जी कि ये जो नैब है ये भी मेरा केस जो है बार बार ये ऐसे करता जा रहा है, डिले करता जा रहा है, 10 मंथ से इनके पास मेरे ऊपर केसेस जो हैं वो करने के लिए, और जो है ये ना कभी तो इनके लॉयर्स नहीं आते, कभी वो लॉयर्स ये बदल जाते हैं, और ये पीटीआई की गवर्नमेंट जो है अगर इनके पास भी बहुत कुछ दिखाने के लिए होता तो ये 4 साल में दिखा सकते थे, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे चल रहे हैं। और उस पर एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि इसमें आप क्या समझते हैं कि मिलिट्री का क्या रोल है, उन्होंने कहा जी मिलिट्री का हम ये समझते हैं कि बहुत ही साफ शफाफ आदमी हेड होना चाहिए। ठीक है जी, तो ऐसी बात ही। अच्छा जी, अब जब के ये कमेंट्स आए और इसके बाद जी जो पिशावर के कोर कमांडर थे उनके बारे में भी कमेंट्स आए कुछ पॉलिटिशियंस के, जो आप समझ ही सकते हैं किन्होंने किए होंगे कि जी ये तो एफिशिएंट नहीं है लोग, और ये ठीक नहीं है, और ये तो जब आपने किसी को खुडे लाइन लगाना होता है तो आप ये इस तरह की जो है पोस्टें दे देते हैं। जरदारी साहब ने यह कहा है जी, अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो, ये कैसे आप जो है इस तरह की ये दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं ये जनरल फेज हमीद को पसंद नहीं करते हैं। तो ISPR ने उसके ऊपर आज बहुत बड़ा रिएक्शन शो किया है। ISPR का आज कहना है जी कि ये जो पिशावर के कोर कमांडर हैं जनरल फेज हमीद, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट बंदे हैं, इसलिए इनको हमने ये पोस्ट दी है। और इन्होंने कहा ISPR ने ये भी कहा कि आप जिस वक्त इस तरह के कमेंट्स देते हैं पॉलिटिशियंस या मीडिया वाले, तो आप अपने जो मिलिट्री लीडरशिप है और इस इंस्टीट्यूशन का जो मोराल है उसको अंडरमाइन करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि फ्रंट लाइन पे खड़े होकर अपनी जान का नजराना पेश करते हैं इस मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए, तो इस तरह के ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स जो है वो देना वो सही नहीं है। इसके बाद जी जो डीजी ISPR थे मेजर जनरल बाबर इफ्तखार, उन्होंने फिर से सामने आके कहा जी मैंने थोड़े दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें भी कहा था, और आज मैं फिर से कह रहा हूं कि मिलिट्री का कुछ लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स का से, हमको मत घसीटो, हम खुद घसीटे हुए हैं इसमें, हम खुद घसीटे जाएंगे, हमको मत घसीटो है जी। तो ये जनाब आज बड़ा रिएक्शन है ISPR का है जी, मजे मस्कराए ना, ये बड़ा सीरियस
नहीं, तो वो जनाब जरदारी साहब ने भी तो यूटर्न मार दिया ना।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लिप भी हम दिखाएंगे जिसमें वो आजकल बड़ी पैशनेट स्पीचेस कर रही है ना उनकी बेटी जो है मरियम नवाज साहिबा के जी, वो ऐसा होना चाहिए, और जो है क्या नाम है उनके भाई साहब शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो भी कह रहे हैं मेरा भाई कभी मिलिट्री के खिलाफ नहीं था। वो हम क्लिप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब का कि उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में क्या बातें कही हैं। और एक इससे भी बड़ा क्लिप जो मैं ढूंढ रही हूं जो मुझे मिल नहीं रहा, हार्ट टॉक एक हुई थी इसाक डार के साथ कुछ अर्सा पहले, हमने कुछ 6 महीने पहले बात हमने ये की थी इसकी, वो क्लिप नहीं मुझे मिल रहा, वो भी मैं निकालूंगी। और आप देखें कितना ग्रिल किया उसने इसाक डार को कि तुम्हारी पार्टी मिलिट्री के खिलाफ है, कहते नहीं 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 मेरी पार्टी नहीं, आप समझने की कोशिश करें हम इंस्टीट्यूशन को बदनाम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कुछ लोगों, वो कहते हैं तुम एक्सप्लेन करो कौन कुछ लोग, जनरल बाजवा कौन, क्योंकि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जो है मियां नवाज शरीफ वो कह रहा है कि जनरल बाजवा ये सारी गेम खेल रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी हार्ट टॉक के अंदर ये डिस्कशन इसाक डार के साथ, वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अच्छा जनाब, आज जो हमारे बीबी जरदारी साहब हैं आप फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त हमने पीडीएम फॉर्म की थी उस वक्त मुझे पीटीआई की गवर्नमेंट ने थ्रेट भेजा था कि अगर तुमने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया नेशनल असेंबली के अंदर तो यहां पे जो है मार्शल लॉ इस मुल्क में आ सकता है। तो वो कहते हैं जी हम डरे नहीं हैं, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस पे बिलीव करते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम जो है ये नो कॉन्फिडेंस मूव लेकर आएंगे, और पीपीपी बड़ी ही क्लियर है इस बात पे कि जिस वक्त तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे हम आगे मूव नहीं करेंगे। और मैं ये भी कहता हूं कि ये जो April 3 के बाद और पोस्ट April 3 के बाद और April 9 और 10 के बाद जो कुछ भी इंस्टीट्यूशंस पे अटैक किया गया है और जो भी ये कॉन्स्पिरेसी की बातें की गई हैं उसके लिए एक आप जो है कमेटी सेटअप करें और बताएं कि ये क्या हो रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने आज स्वाबी के अंदर एक जलसा किया है और वहां पे इन्होंने कहा जी कि हम इमरान खान की हुई गलतियों को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि जो इन्होंने इकोनॉमिक मेस क्रिएट किया और जो पॉलिटिकल मेस क्रिएट किया है इसको हमको साफ करने में, हमको साफ करने में 2 साल लगेंगे। मैडम आपके पास तो कोई पोस्ट ही नहीं है। अच्छा चलो कोई नहीं, मिल जाएगी थोड़े दिनों में। तो वो कहते हैं जी खास तौर पे केपी में इन्होंने बहुत ज्यादा बर्बादी लाई है, इसलिए अब नेक्स्ट जो गवर्नमेंट केपी में होगी पीएमएलएन की होगी। अच्छा जी ये स्वाबी इसलिए पहुंची थी कि यहां पे आज इमरान खान साहब का भी जलसा था, तो इनके जलसे में वही 2-4 लोगों को थप्पड़ चप्पड़ मार के पब्लिक जमा की, उसके बाद फिर इमरान खान साहब को आप देख ही सकते हैं, देखेंगे आप कि कितना लंबे जो है उधर जलसे हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये नो कॉन्फिडेंस मूव जो है इसने हमको इसलिए लानी पड़ी क्योंकि इमरान खान साहब कंट्री को बहुत खतरे की तरफ लेके जा रहे थे और अंडरमाइन कर रहे थे उसकी जो सॉवरेनिटी थी। अब मुझे हार्ट अटैक आए कि ना, सही मैंने आपको कहा था ना ये आज खबरें हार्ट अटैक वाली हैं। मैं क्या करूं भाई, मैं किधर जाऊं मजद भाई, अगर मैं कल छुट्टी पे हुई ना आप सोच लेना कि मैं ब्रैम्पटन हॉस्पिटल में मुझे हार्ट अटैक माइल्ड सा आ चुका है, मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। ठीक है जी ऐसी बातें। अच्छा जनाब, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज जो है जस्टिस हमारे अथर मिनल्ला उन्होंने कहा है जी कि ये जो एफआईए वाले जो हैं जर्नलिस्टों को हरास कर रहे हैं, जर्नलिस्टों को हरास करना छोड़ें। उसमें जी बात क्या हुई है, बात ये हुई है कि एआरवाई न्यूज के जो एंकर हैं अरशद शरीफ, शायद बेचारा सच बोलने की कोशिश कर रहा है तो बहरहाल आजकल तो बेचारा उम्र के लिए गया हुआ है, तो उसने उसके लॉयर ने कहा कि भाई ये 24 घंटे उसको जो है हरास कर रहे हैं और उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वो आज आए क्यों नहीं है यहां पे, तो उन्होंने कहा जी नहीं, लॉयर ने कहा कि वो हज उमरा करने के लिए गए हुए हैं तो वो जब आएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर एफआईए के डायरेक्टर को बुलाकर उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई तुमने इसके खिलाफ कोई केस जो है या एफआईआर जो है वो डाली है, तो एफआईए ने कहा नहीं हमने नहीं डाली। तो फिर जज साहब ने कहा कि अगर एफआईआर नहीं है इसके अगेंस्ट तो फिर इसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप आए और आप उनको बोलें कि आप आके अपना जो है यहां पे रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन इन्होंने आज बड़ा सख्त वो नोटिस लेते हुए कहा कि एफआईए का जो काउंटर टेररिज्म विंग है हर किसी जर्नलिस्ट और हर किसी पॉलिटिशियन के पीछे बगैर वारंट के बगैर बताए हुए न जाए, खास तौर पे जर्नलिस्टों के पीछे, जर्नलिस्टों के अदारे हैं, उन अदारों को आपको बताना पड़ेगा अगर आप किसी जर्नलिस्ट के पीछे जा रहे हैं और उससे नोटिस लेके फिर आप उनके घर में जाएं और ये सारा कुछ करें। तो ऐसे हुआ है। अनफॉर्चुनेटली आज कराची की अफसोस की खबर यह है कि वहां पर एक सदर के एरिए में ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट में एक आदमी की डेथ हो गई है और 13 लोग, ये देखें मजे में कितना खतरनाक ब्लास्ट था, 13 लोग जो है उसमें जख्मी हो गए हैं, जो जख्मी हैं उनको जिना हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। और ये एक एक्सप्लोसिव मटेरियल थी जो कि इम्प्लांट की गई थी एक मोटरसाइकिल के अंदर जो कि गार्बेज डंप के पास थी। तो ये जो ब्लास्ट है ये हुआ है वहां पे जो सदर के लिए में यूनाइटेड बेकरी है वहां पे। तो अब इंजर्ड जो है उनकी हालत का ज्यादा अभी तक पता नहीं चला, पता चलेगा कल तक ये क्या है। एंड जनाब इंडिया के अब इसके ऊपर कट्टे खुलेंगे, इस खबर पर अब कट्टे खुलेंगे। इंडिया के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है आपको पता है ये बहुत अवार्ड विनिंग उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में भी बनाई हैं, प्रकाश झा साहब, प्रकाश झा साहब ने आज कह दिया जी कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जिसको एक्टिंग आती है। है जी, व्हाट इज दिस प्रकाश झा साहब, ये आपने क्या कहा, अब दुनिया आपके पीछे आएगी, ले देख लो आप हंटर लेके आएगी आपके पीछे। अच्छा जी इन्होंने कहा है हिंदुस्तान के अंदर मुझे बड़ा ही, आई एम डिसगस्टेड, इनके वर्ड्स हैं, आई एम डिसगस्टेड विद द एक्टर्स वर्किंग हियर इन इंडिया, इनको कुछ इनको एक्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। ये मेरे से जब भी मैं कभी इनको फिल्म के लिए साइन करता हूं ना तो शूट डेट मांगते हैं, ना शूट के टाइमिंग्स मांगते हैं, ना लोकेशंस मांगते हैं, ना एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में, ना स्टोरी के, किसी के बारे में बात नहीं करते हैं। तो इंतहाई ये जो है खराब है। और वो कहते हैं यही डिफरेंस है इनके और हॉलीवुड के एक्टर्स के बीच में। वो कहते हैं मैं अपनी जब सेल्फ वो ग्रूम अपने आप को करना चाहता था तो मैं वहां जाके क्वाइटली उनकी जाके जो है वो वर्कशॉप्स अटेंड करता होता था, एनरोल कर लेता था एज अ स्टूडेंट, तो तब मुझे एक्टर की लैंग्वेज समझ आनी शुरू हुई। तो यही डिफरेंस है कि ये जो लोग हैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को इंप्रूव करते हैं। मैंने फिर शेक्सपियर की क्लासेस ली, उन क्लासेस के अंदर मैंने एक्टिंग भी की तो तब मुझे कॉन्फिडेंस आया और समझ आई कि व्हाट इज एक्टिंग। हमारा जो एक्टर है वो अपने आप को इंप्रूव नहीं करता, वैसे ही चलते रहते हैं। तो आई एम रियली डिस्गस्टेड विद दैट। और कटे खुलेंगे,
कल रिएक्शन आएंगे,
हाँ कटे खुलेंगे उन फिर और कटे खुलेंगे। जी जी अच्छा जी, आज जनाब पहली बार बहुत दिनों के बाद ऋतिक रोशन ने अपने प्यार का इजहार करके मान लिया कि यस मेरी मोहब्बत है सबा आजाद, सबा आजाद से जी उन्होंने किया। वो हुआ ये कि सबा आजाद जो है ये नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है जिसमें काम करने लगी हैं, एक ड्रामा है इंटरनेशनल ड्रामा, दिस इज रिटन बाय एंड डायरेक्टेड बाय रुमाना मोला, पहली दफा ये डायरेक्टर करेंगी इसको, मिनिमम है इनके इस ड्रामे का नाम। तो ऋतिक रोशन ने कहा ही यू गोना किल दिस उई उई, तो सबा ने आगे से लिखा ही फिंगर्स क्रॉस्ड मो अमोरे, हाँ जी मीन्स माय लव, अमोरे नहीं होता मोर होता है वैसे, बट हम अमोर रहे बोलते हैं मो अमोर, ठीक है माय लव। तो ये जना पहली बार पता चल गया है कि इनके बीच में कुछ कुछ लोचा है, है जी कुछ है चकुर। विल स्मिथ साहब जो हैं उनका एक्टिंग करियर काफी मुश्किल में पड़ सकता है क्योंकि अलादीन का सीक्वल 2 बनना वाला था और अब उनको बताया गया है कि अंदर की खबर है वैसे कि शायद उनको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अंदर की खबर जो है यानी सूत्रों के अनुसार जो है वो उसमें ड्वेन जॉनसन द रॉक जो है उसको कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑस्कर हुए थे तो इन्होंने वो जो क्रिस रॉक था उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था 2022 के जो भी हुए थे, क्योंकि इसने इनकी वाइफ जैडा पिंकेट के हेयर लॉस के कंडीशन के बारे में बात की थी और इसके बीच में इन्होंने कर दिया। तो अब ये जो जिनी का जो रोल था जो इनको पहले दिया जाता था अब वो नहीं दिया जाएगा, और जैसे हमने बताया कि अब रॉक जॉनसन को दिया जा सकता है। और यूएसए जो ये बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, यूएसए अपने मुल्क में पहली बार, विच इज सो सरप्राइजिंग, मैंने कहा यार ये कैसे है, लेकिन ये ऐसे ही है, रग्बी का वर्ल्ड कप पहली दफा करा रहा है अमेरिका। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, या अमेरिका पहली बार रग्बी का वर्ल्ड कप करा रहा है और ये होस्ट करेगा मेंस टूर्नामेंट 2031 में, और फिर टू इयर्स के बाद विमेंस टूर्नामेंट भी जो है वो करा रहा है। वर्ल्ड रग्बी ने आज अनाउंस किया है ये वर्ल्ड कप्स जो हैं उनकी सारी डिटेल्स, 2025 से 33 तक जो हैं ये सारे कप्स होंगे, और इसमें से कुछ कप्स जो हैं जैसे कि 2027 और 2029 का ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे फॉर मेन एंड वेमेन। नेपाल की एक लड़की है जी लखपा शिरपा, 48 इयर्स इसकी एज है, और इसने जनाब बड़ा ही जो है वो रिकॉर्ड कायम किया है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को इसने 10th टाइम स्केल किया है, और आपको पता ही है कि इससे पहले भी ये काफी बड़ी बड़ी जो दुनिया की हैं वो माउंटेन्स उनको कर सकी हैं, और ये लास्ट इनका जो क्लाइंब था 8848.86 मीटर था जो कि इन्होंने 2018 में किया था, और अभी इन्होंने अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ा है। और दूसरा जो रिकॉर्ड है इन्हीं के जो फेलो नेपाली हैं कामी रीता, उनके पास मेन्स रिकॉर्ड है ऑफ 26 क्लाइंब्स, ठीक है जी। और हमारे शाहीन शाह अफरीदी, बूम बूम अफरीदी के सन इन लॉ वापस आ गए हैं, मिडिलसेक्स काउंटी क्लब के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि अब वेस्टइंडीज के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज जो हमने आपको बताया है कि वो खेलनी शुरू करेंगे अब, क्योंकि वो वेस्टइंडीज आ रही है, आपको पता था कि हमने बताया था आपको कि वो नेदरलैंड्स और पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, ये वापस तो आए हैं लेकिन ये वापस फिर से जाएंगे वहीं पे, और 22 इयर्स इनकी एज है। तो मिडिलसेक्स ने आज कहा कि यस इनके मुल्क को भी जरूरत थी और ये फैमिली और फ्रेंड्स को भी मिलना चाहते थे, इसलिए हम इनको इस 3-मैच सीरीज के लिए भेज रहे हैं, और ये इंग्लैंड वापस आएंगे June 8 को उसके बाद, और जो है मिडिलसेक्स में लेटर स्टेजेस में T20 ब्लास्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, मैंने कहा माजिद भाई की लीफों की खबर तो आ गई है तो फिर हम अपनी कैलगरी फ्लेम्स की क्यों ना खबर दें। हमारे जो एंड्रयू मैकपेन है वो उन्होंने जनाब जो है इसको कैलगरी फ्लेम्स को मैच जिताया 3-1 से डैलस स्टार्स के साथ, और अब ये भी 3-2 की लीड पे चल रहे हैं और प्लेऑफ सीरीज में पहुंच गए हैं। Game 6 जो है वो फ्राइडे को डैलस में होएगा, और अगर जरूरत पड़ी अगर ये ना जीते तो Game 7 होएगा और ये संडे को होएगा, लेकिन ये वापस कैलगरी में होएगा।
क्या बात है जी,
क्या बात है मजीद जी,
हो सकता है कैलगरी का और टोरंटो का भी एक मैच हो जाए कभी ना कभी, मगर वो होगा तो फिर वो तो सेमीफाइनल फाइनल्स में होगा।
यस यस, ये बात है,
ये बात थी। आपने वो बात नहीं बताई वो जो एक पैसेंजर प्लेन जो पैसेंजर जो है एक प्लेन था वो बहामस से टेक ऑफ किया उसने वाज गोइंग टू फ्लोरिडा और फ्लोरिडा में जा रहा था तो उसमें दो पैसेंजर थे और कोई क्रू वगैरह नहीं था दो पैसेंजर थे छोटा सेस्ना सेस्ना का जो वो होता है ना 208 सेस्ना 208 तो दो पैसेंजर थे उसमें और एक पायलट था बस और वो बहामास से फ्लोरिडा जा रहा था। जैसे ही टेक ऑफ किया टेक ऑफ करने के बाद जब अपनी हाइट पे पहुंच गया तो उन्होंने नोट किया कि ये जो हमारे पायलट साहब हैं वो तो कोहेरेंट हो गए, मतलब ही इज आउट, उनको अब होश नहीं है, बेहोश हो गए वो. तो अब ये दोनों पैसेंजर जो है बैठे हुए कहने के अब क्या करना चाहिए, तो हवा में उड़ता चला जा रहा है. तो फिर वहां से उन्होंने जो है किसी तरह आपको बटन शटन दबाया उन्होंने और वो बातें शुरू कर दी उससे जो जो ये इनके ट्रैफिक एयर कंट्रोलर होते ना उनसे बात की. उन्होंने कहा कि भाई हमारा पायलट तो नहीं है, अल्लाह ने उनको जिंदगी दे, मगर वो अभी तो इस काबिल नहीं है कि प्लेन चलाए, वो बेहोश है, आप हमें बताएं, हमें तो फ्लोरिडा में आना है, हमें क्या करना है. उस वक्त तक वो फ्लोरिडा को क्रॉस कर चुके थे. तो फिर एयर कंट्रोलर वालों ने शुरू किया, मगर इत्तेफाक से वहां पर एक एयर कंट्रोलर जो था उसने 20 साल जो है ये इस सस्ता पे काम किया था, इस पे काम भी किया था इसने. तो उसने कहा कि ओके आई टेक ओवर, ही टुक ओवर और उसको पूरा समझाया. तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ के बटन वगैरह को मत छेड़ो हमसे बात करने के लिए, तुम अपना सेल फोन का नाम बताओ हमें, तो हम सेल फोन से तुमको फोन करते हैं. तो उन्होंने वहां से सेल फोन पे उसको फोन किया और सेल फोन पे उसको पूरा गाइड किया. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, विद इन मिनट्स उन्होंने बताया उसको कि किस तरीके से. तो वो वेरी सेफली उसने लैंड कर दिया. तो नाउ दे आर कॉलिंग हिम अ पायलट.
दैट्स राइट. ये इसलिए मुझे हंसना इसलिए रही थी कि ये मुझे एक फिल्म याद आ गई, इंडियन सी फिल्म थी. तो यार उड़ा तो लिया, पता नहीं चल रहा इसको किधर लेके जाना है, क्या करना है. तो एयर कंट्रोल से बात कर रहे हैं. हाँ भाई क्या करें, कहते हैं वो आपको लेफ्ट साइड पे एक मोटा बटन नजर आ रहा है. हाँ जी आ रहा है. उसके नीचे एक लाल बटन है, तो वो दबा देता है, कहता है एक लाल बटन है. हाँ जी है, वो मैंने दबा दिया है, उसको नहीं दबाना था. कॉमेडी ऑफ एरर्स. तो ये करें तो वो पहले ही ऐसे दबा देता है. ना ना ये नहीं करना था.
इसको नहीं दबाना था. तेरा मेरी बात तो पूरी सुन लो.
बात तो पूरी सुन लो.
हाँ कि इसको दबाना नहीं चाहिए था.
इट वॉज वेरी हिलेरियस मूवी. वर्षद वारसी की थी उसकी जाफरी की. ओ माय गॉड, इट वॉज सो हिलेरियस. जहाज उठा रहे हैं, पता नहीं चला ऐसे करके
चारों तरफ जा रहा जहाज.
चारों तरफ जा रहा है.
वैसे ये एक दफा नहीं, कई दफा हो चुका है.
कई दफा हुआ है. हाँ जी.
कि उसके बाद जो अनाउंसमेंट होती है, मगर इसमें तो अल्लाह का शुक्र है कि इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेसना जो है उसमें जो नॉर्मली वो ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है.
क्योंकि ये जो नए जो प्लेन है ना भाई, इसके अंदर तो सारे वो एरोडायनामिक्स अब आ गए हैं ना. इट्स वेरी इजी. वो पायलट्स क्या करते हैं, आप उसको वो ऑटो उसके ऊपर लगा के ना, तो वो सो भी चलते हैं, बल्कि ऐसे ऐसे सो जाते हैं वो लोग. वो उनको पता है कि ये इस जगह पे ऐसे. तो जिस वक्त वो डेस्टिनेशन पास आती है ना, ट्यूंग ट्यूंग वो बजने, और फिर दो पायलट्स हो गए आगे बैठे होते हैं. अगर एक सो भी रहा है, जाग रहा होता है. हाँ, एनको पायलट. तो वो एक जाग भी रहा होता है, तो डेस्टिनेशन के पास उनको इंडिकेशंस भी आने शुरू हो जाते हैं. तो वो जाग अगर सो भी रहे तो वो जाग देते. तो मगर सेसना में ऐसा सिस्टम नहीं है ना.
नहीं,
ये सेसना ये ओल्ड प्लेन्स हैं.
ओल्ड प्लेन्स और नॉर्मली इनको जो है या तो छोटे जगहों पे जाने के लिए या ये कि इनको ट्रेनिंग की पर्पसेस पे सेसना. एवरी पायलट हैज फ्लू अ सेसना व्हेन दे वर गेटिंग द ट्रेनिंग.
आवर्स पूरे करने होते हैं.
आवर्स पूरे करने के लिए वो सेसना में जाते हैं. और आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले भी 407 पे एक सेसना जो है उसका इंजन खराब हो रहा था, तो 407 को उतार दिया उसने. 404 पे, क्योंकि ये बटनविल का जो एयरपोर्ट है ना हमारा मार्कम का, बटनविल इज कॉल्ड बटनविल एयरपोर्ट इन मार्कम. तो वहां पर जो है वो स्कूल है उनका, है ना. तो यू सी सो मेनी ऑफ देम फ्लाइंग ओवर घरों के ऊपर जो है ना, आप देखते हैं वहां पर फ्लाई कर रहे होते हैं ये सारे. दे आर ऑल स्टूडेंट्स. तो वो स्टूडेंट्स जो है वहां पर अपने आवर्स पूरे कर रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं एंड दे आर वहां पर. तो अक्सर उनमें अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो दे नो हाउ टू लैंड इन हाईवेज पे. 407 अभी कुछ हफ्ते पहले 407 पे, इससे पहले 404 पे भी
तस्वीरें आती है ना सारी उस पे सोशल मीडिया पे.
हाँ जी, 404 पे भी उन्होंने लैंड किया था. तो ये इट इज, बट द ओनली थिंग इज
वेरी डेंजरस. इट्स वेरी डेंजरस.
मगर मैं बात कर रहा हूँ उन द्वारे प्लेन्स की जिसमें पैसेंजर्स भरे हुए हैं, बड़े प्लेन,
वेरी डेंजरस.
और उसके अंदर जो है बाज दफा अगर ऐसा हो जाए, और हुआ है ये एक दफा नहीं कई दफा हुआ है कि वो पायलट जो है या वो दूसरा पायलट जो है दोनों
अचानक तबीयत खराब हो गई, हार्ट अटैक आ गया, कुछ
हाँ,
हो गया,
कुछ हो गया, तो अब वो किसी को पहले ऐलान करते हैं वो टून टून कोई पायलट है यहाँ पर, तो जितने शोर होते हैं पैसेंजर वो वैसे
बेचारे घबरा के उठ जाते हैं।
अब क्या हुआ, तो अगर पायलट नहीं है, किसी ने कभी कुछ नहीं पता है, तो भाई जमूरे आ जाओ, कोई कोई एक जमूरा होता है
पानी को ढूंढने, आओ भाई जुगाड़ लगाओ।
हाँ जुगाड़ लगाओ। तो अब वो फिर वो आते हैं, वो आके उस पे बैठ के ना, तो फिर वो उनसे बात करते हैं एंड दे आर द वंस हु टेल्स देम ओके वही लाल बटन है, हाँ है, उसको नहीं दबाना। वो ये पहले वही पहले अच्छा दे ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स है ना, दे आर वेरी काम पीपल, वेरी काम, क्योंकि वो तो कितने सैकड़ों जहाजों को डील कर रहे होते हैं ना, उनको पता है कि 35,000 फीट पे भी कौन सा वाला है जो जा रहा है, वो क्रॉस कर रहा है हमारी सिटी को, और नीचे वाले जो है कौन से, तो उनको जो है फिर वो उस तरीके से उनको बताते हैं, जैसे आपने कहा ना कि दे ऑल ऑटोमेटिक नाउ, तो ऑटोमेटिक और लैंडिंग भी ऑटोमेटिक है, तो वो सारा बता बुधू के वो उनको कहते हैं कि भाई तू
रिलैक्स कर लो, जरा कॉफी शॉफी पी लो,
कॉफी शॉफी पी लो, ये ब्रेकें जो ना ये इनको चलाना सीखो, क्योंकि जैसे जमीन पे लगेगा ना तो अपने पूरे दोनों हाथों से तुमको खींच के इसको ब्रेक मारनी पड़ेगी। हाँ जी हाँ, ब्रेक मारनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये ब्रेक ना मारी ना हम तो फिर हमारी लैंडिंग सही नहीं होगी। तो ये थी हमारी आज की न्यूज साहब, 6:45 हो गए आज, आज देखें आपको ये पसंद है प्रोग्राम जो है, हमारे जितने भी लिसनर्स और व्यूअर्स है ना उनको ये प्रोग्राम बहुत पसंद है, जो हमारे मलिक साहब लियाकत मलिक साहब जुमेरात को पेश करते हैं ये भूली बिसरी यादें, आज जो है वो ट्रिब्यूट देंगे निशो बेगम को। निशो बेगम आप याद है, निशो बेगम, निशो बेगम जो है, निशो बेगम जो है वो पाकिस्तानी हीरोइन थी, बहुत ही अच्छी हीरोइन थी वो, और उन पे फिल्माए हुए गीत वगैरह जो है आज देख सकेंगे आप।
ये उनकी शान की तो मदर नहीं है, शान की मदर है ये निशो। अच्छा अच्छा ये ऐसा वो मुझे लगता है कि
वहां से आवाज आ रही
है, निशो जो है वो शान की मदर है। यस
अच्छा मुझे
क्योंकि शान का एक दफा मैं इंटरव्यू सुन रही थी तो शान ने ये कहा था कि जो मेरी मदर थी उन वो ये थी लेकिन वो निशो के नाम से शायद मशहूर थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बाहर जाके पढ़ो और ये एक्टिंग का कोर्स करो, तो मैं जब जा रहा था तो फिर वो बड़ी उदास हो गई थी, तो आई हर्ड हिज इंटरव्यू बिकॉज आई रियली लाइक शान।
अच्छा,
शान हैज रियली वेस्टेड हिमसेल्फ, मुझे लगता है कि शान जैसे स्टार को ना हॉलीवुड में जाना चाहिए था, लेकिन उसने कभी कोशिश ही नहीं की है।
यहाँ से अगर पढ़ लिख के गया है वो
अमेरिका से एक्टिंग का कोर्स करके गया था वो।
तो आज 7 बजे आज 7 बजे से आप ये प्रोग्राम देखना शुरू करेंगे, रेडियो पे सुनेंगे आप, टीवी पे आप देख सकेंगे भूली बिसरी यादें विद लियाकत मलिक। लियाकत मलिक साहब बड़े आप वैसे ऑनेस्ट गॉड ही इज अ वेरी डेडिकेटेड इनटू हिज व्हाटएवर, जो भी उनको काम दिया जाए ना जनाब लियाकत मलिक साहब बड़ी डेडिकेशन से काम करते हैं।
और देखिए जरा कितनी पुरानी सहेलियां बना के बैठे हुए हैं, सारों के साथ इन टच हैं।
आपको पता है ना कि इनके साथ जब ये पाकिस्तान में थे जवानी में अपनी
स्टार बनना चाहते थे,
उस जमाने में हीरो बनना चाहते थे, मगर इनके अकॉर्डिंग टू हिम
He was short yeah.
और वो उस वक्त उनको हीरो का चांस थे, सारे टॉल थे, अब वो सारे उम्र के हो गए और वो अब सब बापों का किरदार अदा कर रहे हैं, तो अगर ये बाप बनना चाहे तो ये शॉर्ट है, तो मतलब तो ना उस वक्त इनके साथ हो सका ना अब हो सका, तो मगर जनाब लियाकत मलिक साहब इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, और इनको तो अभी कुछ लोग हैं जो फिल्म बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने इनको ऑफर भी किया है, तो अपनी हसरत पूरी कर लेंगे ये। यस इनको ऑफर हुआ है फिल्म,
मगर देखिए जरा अपनी अकेली बात करके आ गए, मेरी और आपकी नहीं की है माजिद भाई, व्हाट इज दिस।
हाँ
मेरा बड़ा प्रोटेस्ट है इस बात के ऊपर,
हम तो कैरेक्टर एक्टर्स होंगे ना। हमारे कैरेक्टर्स अच्छे हैं ना।
अच्छा क्या है हमारे कैरेक्टर, वैसे बताएं जरा
कैरेक्टर,
मेरा आपका क्या कैरेक्टर है?
अच्छा है,
अच्छा अच्छे कैरेक्टर
जो भी है अच्छा है,
इसलिए हम बाहर बैठेंगे।
हाँ तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हमको वो कहेंगे यार किसका कैरेक्टर अच्छा,
तुम पखा पकड़ के तुम भी खड़े हो इधर, वो जो पखी नहीं होती जो कहती है टक टेक वन वो कहेंगे लो भाई ये पकड़ के खड़े हो यहाँ पे
नहीं नहीं
मुझे और आपको तो मुझे लगता है यही जॉब मिली
नहीं 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 कैरेक्टर एक्टर
अच्छा तो वही मैं कह रही हूँ वो कैरेक्टर एक्टर का क्या रोल है बाप है माँ है क्या है फटे
हो सकता है नेबर हो
अच्छा अच्छा
हो सकता है नेबर हो
जो इटालियन लड़कियां गिर रही हैं उनको उठा रहा है, हैं
बहुत बड़ा काम है
ओ बहुत बड़ा काम है भाई सही वाकई मैं इतनी मैं कल से जब से मैंने आपकी ये बात सुनी है ना
हाँ
आप सोच सकते हैं मैं आपसे कितनी इम्प्रेस हो गई हूँ
हाँ।
इतनी कोई मैं आपसे इम्प्रेस हो गई हूँ कि जिसकी कोई इंतहा
है ठीक है ऐसे इम्प्रेस ही रहना
ऐसे ही रहना में
तो ये प्रोग्राम आज आप 7 बजे से देखना शुरू करेंगे भूरी बिसरी यादें विद लियाकत मलिक साहब और उसमें निशो बेगम पर फिल्माए हुए गीत और उनसे बातचीत और उनके यार दोस्तों से बातचीत अगर आपने कभी प्रोग्राम देखा या सुना नहीं है ये तो भाई एक दफा आप देख लें फिर हर जुमेरात को आप वेट करेंगे कि इस प्रोग्राम को क्योंकि न सिर्फ ये कि यहाँ पर देखा जाता है ये कनाडा में अमेरिका में पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में वहां पर सब जगह ये प्रोग्राम देखा जाता है तो आप देखें और अप्रिशिएट करें और फिर लियाकत साहब को फोन करें या उनको मैसेज करें और इनकरेज करें कि ये कितना अच्छा प्रोग्राम है जितने भी पाकिस्तान के और इंडिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट गुजर चुके हैं या हैं अभी जिंदा उन तमाम को ट्रिब्यूट करते हैं हर हफ्ते में एक दफा ये और वो जुमेरात का दिन होता है और फॉर्चुनेटली टुडे इज द डे सब अब मेरा ख्याल मैं लिए चलूँ आपको एक गीत सुना दें
Yes, प्यारा सा सुनाए
प्यारा सुनाए
जैसे आपने पहला सुनाया था बहुत ही प्यारा था
वो ना
वेरी नाइस या वेरी नाइस मैंने सुना नहीं था पहले ये गाना ये बहुत प्यारा था आपने जो सुनाया था
ओहो अच्छा वो गीत
मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया
हाँ वो वाला गीत था कौन सा वाला गीत था वो गीत था anyway, छोड़े मेरा दीवाना मेरा दीवाना बहुत ही खूबसूरत गीत था मेरा दीवाना वो ये गीत जो है हमारी मलका तरन्नुम मादाम नूरजहां की आवाज में मुझे बड़ा पसंद है ये
वन एंड ओनली आपको पता है इनके बारे में क्या कहा था शबाना आजमी ने एक दफा गई थी दिलीप कुमार से मिलने के लिए इंडिया इनका बड़ा प्यार था ना दिलीप कुमार के साथ इन्होंने बड़े इकट्ठे में फिल्मों में काम किया तो ये एक दफा उनको मिलने के लिए गई ना तो जब ये गई तो एज इनकी ज्यादा ही थी तो हिंदुस्तान में बड़ा ना कुछ आ गया नेगेटिव सा प्रेस आ गया ओ ये बूढ़ी औरत आ रही है ये क्या गाएगी कोई गा भी सकेगी कि नहीं गा सकेगी अच्छा ये तो फिर शबाना आजमी का बाद में किस्सा सुनाते हैं नेक्स्ट डे जब इसने गाया तो सारा हिंदुस्तान पुठा पड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि यस शी सैंग सिंपल हेडलाइन थी एंड शी सैंग यस शी सैंग ऐसे करके हेडलाइंस थी इतनी कोई इनकी गजब की आवाज थी और लोग इतने मेस्मराइज हो गए थे तो उस वक्त जिस वक्त ये इवेंट वहां पे हो रहा था ना तो उसमें शबाना आजमी ने कहा था एक सेंटेंस बोला था एंड आई स्टिल रिमेंबर कहती है कि जैसे दुनिया में एक चांद है और एक ही सूरज है वैसे एक ही नूर जहां है
माशाल्लाह माशाल्लाह वाओ और वाकई में
हिंदुस्तान में खड़े होके
हमारा नूरजहां जो है वो एक ही एक ने एक थी एक हीरा
लेकिन मजद भाई उस मुल्क में खड़े होके किसी एक इतने बड़े स्टार का एक ऐसी क्योंकि लता मंगेशकर
आज आज की अगर आप माहौल देखें ना तो आज ये कोई नहीं कह सकता पाकिस्तानी स्टार के लिए
यस
ठीक है ना वो जमाना बड़ा अच्छा था बहुत अच्छा जमाना था
और मजद भाई एक एक स्टार आप देखें जरा उस्ताद अमानत अली उस्ताद गुलाम अली ये सारे आप बंदे देखें ये कैसे थे मेहदी हसन साहब
हाँ।
कोई मैच नहीं था यानी आप सोचें कि लता जो है वो कहती है मैं सुबह उठ के पहले मेहदी हसन का गाना सुनती हूँ
हाँ।
जब वो जिंदा थी वो कहती थी
हाँ।
वो कहती थी इनके गले में भगवान बोलता है
ना वही मैं कहने वाला था अभी आपसे कि मेहदी हसन साहब के लिए जो है लता जी ने क्या कहा वो आज का आर्टिस्ट इंडिया का
नहीं कहता
वो नहीं कह सकता
नहीं नहीं
नहीं कहना चाहेगा क्योंकि देखिए ये स्टार्स वगैरह में आपस में कोई वो दुश्मनी
नहीं है,
है। हाँ, या, हाँ, कोई कुछ नहीं है
लेकिन ऐसा आवाम कुछ में, नहीं है ना
आवाम में देख लें आवाम में देख लें कि आवाम भी जो है चाहे वो इंडिया के आवाम हो या पाकिस्तान के आवाम हो उनको तो चाहिए फिल्में देखना गाने इंडिया के आर्टिस्ट जब पाकिस्तान आके उन्होंने परफॉर्म किया था आप देख लें कि कितने हजारों की तादाद में किस तरीके से उनको इज्जत बख्शी गई थी इतना प्यार और इज्जत बख्शी गई थी उनको और ऐसे ही जब पाकिस्तान के स्टार्स जब इंडिया गए थे तो उनको भी कितनी इज्जत बख्शी गई थी मगर वो दौर दूसरा था आज के दौर में आज की मेंटालिटी में वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो
इतनी हीट जनरेट कर दी है ना
एग्जैक्टली
लीडर्स ने कि बस नफरतें इतनी फैला दी हैं.
हाँ तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो आज के दिन अगर कोई करना भी चाहे तो नहीं कर सका.
लेकिन वैसे स्टार्स भी तो नहीं है ना माजिद भाई. नूर जहां, गुलाम अली और जो है ये अमानत अली, ओ माई गॉड, या मेहदी हसन, वैसे वैसे गाने वाले भी तो नहीं है ना माजिद भाई.
नो कॉमेंट ऑन दैट.
शफकत अमानत अली है ना,
है ना उस्ताद गुलाम अली है ना,
गुलाम अली अभी अल्लाह उनको सलामत
रखे, गुलाम अली है ना, बड़े अच्छे लोग हैं. एनीवे 6:53 हो चुके हैं साहब. चलिए मैं आपको एक गीत की तरफ ले चलता हूँ. गीत के फौरी बाद हम आपको कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम सुनाएंगे और फिर हम आपको लिए चलेंगे ट्रिब्यूट टू निशो जी. आज की जो स्टार है निशो, आज उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा. भूली बिसरी यादें विद लियाकत मलिक साहब. हमें यहीं इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी बशर्त जिंदगी. चलते चलते गुजारिश इल्तिजा जो हमेशा करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा कि अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा. हम आपके लिए दुआगो होंगे, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें. खासतौर से हमारे दोस्त, हमारे भाई मुजफ्फर अली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें. उनके साथ वो तमाम लोग जो अपना सफर मुकम्मल करके इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके दर्जात को बुलंद करे, उन्हें जन्नत फिरदौस में अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर टोरंटो मेपल लीफ. इंशाल्लाह तआला कल खुशी में आपसे मुलाकात होगी. Go leaves go, go leaves go, go leaves go.
Thank you, Mahesh.
Thank you so
much.
Inshallah. A stunning house for sale in Mississauga. 4+1 bedroom, 4 bathroom, all brick home, the large kitchen, new stainless steel appliances, spotlights, backsplash and slate floors. The modern glass railing staircase, new flooring, new electric fireplace and the fully finished basement. Located in prestigious Aaron Mills area, easy access to 403 minutes from UFT campus, shopping and transit. For more information, call Arifa Muzaffar 647-898-6245 or Majid Jamal at 416-893-2223.
Liza Cosmetic is back with huge discount on brand name products. Ji haan, zabardast brand names, selection of perfumes, cosmetics, skincare brands. Just spring forward to Liza's warehouse sale with up to 80% discount. Aapko aana hai at 135 Commerce Valley Drive, East Markham, near Leslie and 407. Spring Mega Shopping sirf 2 hafton ke liye, sale sirf Friday, Saturday, Sunday aur Monday ko hai. From April 23rd to May 15th. Visit lizacosmetics.com.
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747471।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन ले या सलाह लैण ले आज ही SNS Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000।
ओ माया मेहंदी रोका या व्यादा होवे मौका प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
स्वीट महल वालियां दा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 100 तो लेके 700 तक दी कैपेसिटी ते खाना उही लाजवाब।